Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अब ये अकार उकार मकार ये मात्राएं उसे समझाने के लिए हैं, उसका माप कराने के लिए. अब जब माप करते हैं तो क्या करना पड़ता, किसी वस्तु का माप करने के लिए क्या चाहिए? आप सामान्य वस्तु स्थूल वस्तु का माप करते तो तराजू चाहिए, ठीक है. और यदि टेम्परेचर आदि को मापना हो तो उसके लिए भी थर्मामीटर आदि चाहिए. वायु आदि को नापना हो तो उसके लिए बैरोमीटर इत्यादि क्या चाहिए, मैंने कुछ न कुछ उसके लिए चाहिए. अब यहां पर भी इसको मापना है तो कुछ साधन चाहिए, बगैर साधन के हम कैसे माप पाएंगे? तो अकार उकार मकार यही ओम का स्वरूप है, तो इसको मापना है. तो मापने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक अन्य वस्तु का आहरण करना पड़ता है, तराजू आदि का, बैरोमीटर थर्मामीटर, मैंने उसे ग्रहण करना पड़ता, उसे लाना पड़ता है. और उसे जब हम लाते हैं, उसे जब ग्रहण करते हैं, तब हम उसको मापने में समर्थ होते. तो आकार को हमें मापना है, उकार को मापना है, मकार को मापना है. और जब माप लेंगे तो पूरे ओम का हमें जो है माप ज्ञात हो जाए, माने उसकी स्थिति उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाए, कितना है ये, क्या है ये पता चल जाए. इसलिए कहने लगे अब इसके लिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए? कहा कुछ थर्मामीटर बैरोमीटर की तरह से यहां भी कुछ चाहिए. तो उसके लिए आहार किया, तब जो है इसको कह दिया व्याहृति. क्या कह दिया? अब विशेष रूप से उस वस्तु को लाना. विशेष रूप का मतलब जो स्वयं में भी स्वस्थ हो, एक तराजू भी कहीं उसकी ज्योति है कमजोर हो तो भी वो अपने में समर्थ नहीं. इसलिए कहा है व्याहृति, जिसका आहार किया वो कैसे, तो विशेष, उसमें भी विशेष सामर्थ्य होनी चाहिए, विशेष सामर्थ्य वाले का ही आहार करना. इसलिए संकेत कर दिया व्याहृति. तो विशेष रूप से जिनका आहरण किया गया उनको ही हमने व्याहृति शब्द से कह दिया. इसलिए कहा कि अकार की व्याहृति क्या, उकार की व्याहृति क्या, और मकार की व्याहृति क्या. अब जिसका आहरण किया, जिसके द्वारा उसे मापेंगे, जिसके द्वारा उसे जानेंगे, वो व्याहृति क्या है, माने वो उसकी तराजू क्या है, वो उसका साधन क्या है, तो संकेत कर दिया अकार के लिए भू है ना, उकार के लिए भुवह और मकार के लिए श्व. उन तीनों क्षणों को क्रमशः मापने के लिए इन तीन व्याहृतियों को ग्रहण करना हुआ, इनके द्वारा ही हम उन्हें माप सकेंगे. अब जो है आकार की व्याहृति को बतलाया भू. अब भू है तो तराजू का एक पल्ला आ गया. अब एक पल्ला तो आ गया, लेकिन केवल एक पल्ला तो उसे माप नहीं सकेगा, और केवल पल्ला भी नहीं माप सकेगा. क्या चाहिए? का उसके अंतर्गत ज्योति चाहिए, ज्योति माने डोरी, ठीक है ना. और उस डोरी का संबंध किससे होना चाहिए? कहा उस डंडी से होना चाहिए, ये सब मतलब किया जाता. तो ऐसे ही भू. अब भू क्या है? तो भू शब्द को जब देखते हैं तो भू शब्द को हम लोक में अच्छी तरह से जानते हैं. भू माने क्या होता तो तुरंत कह देते भू माने पृथ्वी, भू माने पृथ्वी. तो अब जो है भू शब्द का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी. और पृथ्वी क्या है? जो भू शब्द से हमने पृथ्वी कहा, तो पृथ्वी जो है समस्त स्थूल पदार्थों का आश्रय विशेष है. जितने भी स्थूल पदार्थ हैं उन समस्त स्थूल पदार्थों का आश्रय विशेष क्या है? पृथ्वी. ऐसी जो पृथ्वी है कहा तो उसका अर्थ हुआ भू. तो एक पलड़ा हमने क्या ले लिया? का भू है. तो भू क्या है? कहने लगी पृथ्वी. तो पृथ्वी को ले लिया. अब जो पृथ्वी है तो उस पृथ्वी तो स्थूल है, जड है, वो तो स्वतः कोई क्रिया कर नहीं सकेगी. इसलिए फिर उसमें पृथ्वी में भी संबंध बता दिए. क्या संबंध बतला दिए, तो उसी को भू शब्द कहते, तीन व्यारतियां, फिर उसमें जो है लोकों की कल्पना, ये सब उसकी डोरियां। और डोरी क्या करती है, एक से दूसरे तक संबंध को स्थापित कराती है, ठीक है। तब उसकी डोरियों को बतलाया भू, मैंने भू लोक शब्द से कह दिया, मैंने भू लोक सारा का सारा ले लिया। और अब उसमें जो डोरियां भी हैं, तो वो डोरियां किसी छेथन आदि के द्वारा लगेंगी। तब उस भू और भू को बतलाते हुए उसमें देवताओं की कल्पना की, किसकी कल्पना की गई, भू लोक कह दिया, पृथ्वी कह दी, और उसमें देवताओं की कल्पना की गई। अब यहां भी संकेत मात्र किया, वो आगे क्रम से लेंगे, लेकिन अन्य श्रुतियों के अंतर्गत चर्चा की गई। वहां पर कहा, और ऐसे अमान्य व्यक्तियों ने नहीं कहा, जो सर्वथा मेधा से संपन्न, श्री से संपन्न और पूर्ण योग्यता वाले थे, ऐसे वह ऋषि, और कहां पहुंचे, तो कहने लगे अथर्वा के पास पहुंचे। और अथर्वा ऋषि के पास पहुंचे, और कौन कौन थे, तो पेप्ला दंगरा सनत कुमारश्च, कौन कौन पहुंचे, कह पेप्लाद ऋषि और सनत कुमार। और आप जानते हो पेप्लाद की कथा सुनते रहते हो, सनत कुमारों की कथा सुनते रहते हो, कल भी जो चर्चा की, पेप्लाद कैसे थे, जिन्होंने ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, अपनी प्रसन्नता के लिए, अर्थात ईश्वर की, माने वहां पर उन्होंने कह दिया कि मुझे तो फल का पता ही नहीं, क्या मतलब, और फल का पता नहीं लेकिन फिर भी कर्म किया, तो कर्म किसके लिए होगा, वही कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होता है, वही कर्म ईश्वर अर्पण होता है, वही निष्काम कर्म कहलाता है, ये सारा का सारा संकेत आ जाता है। तो ऐसे पेप्लाद ऋषि, और भी इनकी गाथाएं हैं, तो चर्चा ज्यादा नहीं बढ़ाए, तो अब ऐसे पेप्लाद ऋषि और सनत कुमार, सनक सनंद संत कुमार की स्थिति को जानते ही, तो जो सदा विधि निषेध से परे हैं, जो सदा आत्मनिष्ठ रहने वाले हैं, ऐसे वह सनत कुमार और पेप्लाद ऋषि कहां पहुंचे, कहा अथर्वा ऋषि के पास पहुंचे। ये अथर्वा ऋषि क्या है, तो आप उपनिषदों में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, हैं, ज्येष्ठाय पुत्राय अथर्वाय, हैं, आहो, जो ब्रह्म विद्या थी, जो मूल ज्ञान था, जो हैं किसको प्राप्त हुआ पहले, तो कहने लगे यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं वेदांश प्रेरोति तस्मै, जिस ब्रह्मा को वह मूल ज्ञान जिसमें था हैं, जिसके लिए जो केंद्र प्रहण किया गया, तो ऐसा ज्ञान से संपन्न जो ब्रह्मा, इसलिए उसका नाम ही हिरण्यगर्भ रख दिया, है ना, ऐसे ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा के आगे दूसरी पीढ़ी आई, तो उस ब्रह्मा ने वो सबसे पहले ज्ञान किसको दिया, तो अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को, उस अथर्वा को। और अथर्वा शब्द का अर्थ ही क्या होता, न थर्वयति इति अथर्वा, जहां पर किसी प्रकार की थर्वता नहीं है, किसी प्रकार की कंपन नहीं है, और कंपन नहीं मैंने किसी प्रकार का संकल्प विकल्प ही नहीं है, आज जहां किसी प्रकार का विक्षेप ही नहीं है, कंपन में क्या होगा, विक्षेप होगा, जहां किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है, जहां किसी प्रकार की कंपन नहीं, दूसरा अर्थ किया थर्व, माने होता कपट, छिपाव, जहां कोई छिपाव नहीं, जहां कोई कपट नहीं, और छिपाव कपट भी कहां होगा, जहां यत्र यत्रम यत्रम पश्यति, हैं, जहां दूसरा देखोगे तो वहां ही तो छिपाव होगा, अब जो कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा तो छिपाव किससे करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे अथर्वा, और ऐसे अथर्वा को ज्ञान उन्होंने दिया, और वो ज्ञान से संपन्न, और वैसे तो वहां लंबी प्रक्रिया भी बतला दी, अथर्वा को दिया, अथर्वा ने किसको दिया, भरद्वाज को दिया, भरद्वाज ने किसको दिया, कहा अहंगिरस को दिया, अहंगिरस ने किसको दिया, कहा अंगी को दिया, और ये क्रम से प्रक्रिया चली, यहां तक कोई भी विधि नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या कहा, सौनको ह महासालो है विधिवत उपसन्ना, फिर सौनक ऋषि जो आए, वो सौनक ऋषि एक विधि के साथ, जो विधि के आप जो समित पाणि में सूत्रियम करके जो विधि आदि बतलाई गई, तो उस विधि के साथ कहां पहुंचे, उस अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे, और वहां से विधि की प्रक्रिया कर, वहां तक किसी विधान को नहीं किया गया, कोई नियम नहीं लगाया गया, क्योंकि वहां तक बिल्कुल पवित्रता थी, सत्यवाह भारद्वाज आए, वो भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न होने वाले, सदैव सत्य का वहन करने वाले, सत्य में ही प्रवाहित होने वाले, ऐसे ऋषियों की कल्पना वहां कर दी। तो वहां तक कोई नियम नहीं हुआ, लेकिन उसके आगे शौनक ऋषि से वहां पर विधि की चर्चा हो गई। ठीक है, तो यहां तक इसका मतलब क्या, ये बात केवल इसलिए कही, वहां का वर्णन नहीं करना। अथर्वा का मतलब है जहां किसी प्रकार का छिपाव नहीं है, जहां किसी प्रकार का संशय विपर्य आदि नहीं है, जो पूर्ण शुद्ध है, जिसका अर्थात जिसके अंदर पूर्ण अधिकारिता है, जो पूर्ण योग्यता है, और ऐसा पूर्ण अधिकारी, ऐसा पूर्ण योग्य अथर्वा, उस अथर्वा को कहा। और वो अथर्वा जब ऐसे अथर्वा थे तो वो उस ज्ञान से भी पूरे संबंधित थे। ऐसे अथर्वा ऋषि के पास में जाकर के पेप्लाद ऋषि और सनत कुमार पहुंचे, और सनत कुमार दोनों पहुंच करके अथर्वाम प्रति उवाच, फिर अथर्वा के प्रति कहने लगे, क्या कहें, भगवह किं ध्यानम, किं ध्यायतव्यम, को वा अस्य ध्याता, कस्य ध्येय। क्या प्रश्न किया कि हम ये आपसे पूछने आए हैं, ध्यान किसको कहते हैं, और ध्यान करने वाला जो ध्याता है वो कौन होता है, और जो जिसका ध्यान करता है वो ध्येय पदार्थ क्या है ना। ये प्रश्न की, और चार प्रश्न की, किम ध्यानम, किम ध्यायतव्यम, और ध्यान कैसे करना चाहिए, तो ध्यान कैसे, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्याता कौन है, और ध्येय क्या है, ये पूछा। और ये जब पूछा तो अथर्वा जो है बोलने लगे, कहा अथर्वा उवाच, अथर्वा ने कहा है? कहने लगे इत्येकाक्षरम ध्यानम, ओम इत्येकाक्षरम ध्यान, यह जो ओम है यह एक अक्षर जो है यही क्या है, कहा ध्यान है। और फिर कहने लगे स ध्येय, सैव ध्याता, और कहने लगा कि वही ध्यान है, वही ध्येय है, वही ध्याता है, ये सब चर्चा कर। कहने लगे आपकी ये बात, वही ध्यान भी है, वही ध्याता भी है, वही ध्येय भी है, ये आपका कहना मेरी समझ में नहीं। वही ध्याता ध्यान करने वाला होगा, ध्येय पदार्थ उससे पृथक होगा, और ध्यान प्रक्रिया एक होगी, लेकिन आप ये जो कह रहे हो समय, तब उन्होंने कहा ये क्या है, तब उन्होंने संकेत किया ओम इसको कैसे समझो, तो वहां भी मापना फिर शुरू किया ओम को बतलाने के लिए, और कहने लगे ओम जो है वो क्या है, कहा चतुर्थ मात्रा वाला है, अभी तो तीन मात्राओं का यहां संकेत किया, कहा चार मात्रा वाला ओ, और चार मात्रा वाला कह करके फिर कहा मात्रा पादा पादा मात्राश्च, क्या कहा, कहा मात्रा ही पाद हैं और पाद ही मात्रा, ये संकेत। अब कहने लगे क्या मतलब, तो कहने लगे पाद का मतलब क्या है, तो पाद शब्द का अर्थ शास्त्र के ढंग से है पद्यते गम्यते इति पादा, है ना, हम लोग भी चल करके किसी पदार्थ को प्राप्त करते, लेकिन वहां पद्यते गम्यते इति पादा, जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा उसे प्राप्त किया जाए, वही क्या कहलाता, पाद, ऐसा संकेत किया। अब जो है ऐसा कहकर के कहा चार पाद हैं और वो पाद ही मात्रा हैं, और फिर क्रम से उन्होंने जो है उनको बतलाया, और क्या संकेत किया, तो कहने लगे प्रथमा अस्य अकार मात्रा, क्या कहा, पहली मात्रा जो है वो क्या है, अकार, पहली मापने की जो वस्तु है, चीज है, साधन है, वो क्या है, अकार। कहने लगी आकार है, क्या मतलब, ऐसे कैसे मापा जाएगा उसे, तो कहने लगे ये जो प्रथमा मात्रा आकार है, तो कहने लगे इसका जो है, फिर कहा पृथ्वी लोक, इसका लोक कौन है, कहा पृथ्वी, पृथ्वी लोक ऋग्वेद, ऋग क्या है, कहा वेद है। और फिर संकेत किया, कहने लगे पृथ्वी लोका ऋग्वेदः और ब्रह्मा अष्ट वसु देवः, ब्रह्मा और आठ वसु इस पृथ्वी के क्या है, देव, द्योतन करने वाले, और फिर संकेत किया अनुष्टुप छंद गार्हपत्य अग्नि ही, ये सब किसमें आ गई? तो कहने लगे ये अकार मात्रा के अंतर्गत आ गई। तो भू व्याहृति के द्वारा क्या हुआ? इन चीजों का सबका ज्ञान। मन ये जो पृथ्वी लोक है, ये सारा का सारा पृथ्वी लोक अकार मात्रा के अंतर्गत सन्निहित है, ये संकेत किया। मापने की प्रक्रिया बतला दे, और इसके अंतर्गत क्या क्या है तो बतला दिया। जो ऋग्वेद है वो भी इसी के अंतर्गत है, और क्योंकि यहां देव लोक और अग्नि इसमें भी बतलाने जा रहे हैं, तो अब यहां पर क्रम से उन्होंने बतला दिया, कहा कि इसके जो है पृथ्वी इसका लोक है, और देव क्या है तो ब्रह्मा और इष्ट वसु देव है, और वेद क्या है तो संकेत कर दिया ऋक इसका वेद है, और अग्नि क्या है तो गार्हपत्य अग्नि, और छंद बतला दिया अनुष्टुप। ये इस प्रकार से वहां बतलाते हुए फिर आगे चर्चा की, इतना इसका प्रारूप बतला दिया। फिर कहने लगे उकार है द्वितीया अस्य उकारो मात्रा, द्वितीय मात्रा जो है इसकी क्या है? कहा उकार। अब उकार है तो उकार का क्या रूप? तब वहां भी लोक वेद और जो है अग्नि आदि को बतलाते हुए जो यहां संकेत करते, तो वहां भी संकेत किया अंतरिक्ष लोक। लोक क्या है उसका? तो कहें अंतरिक्ष लोक। और वहां पर जो है, यहां पर सामवेद को पहले लिया, थोड़ा फर्क इतना है, वहां लिया यजुर्वेद अथर्व सिखोपनिषद के अंतर्गत, वहां अथर्व वेद को, वो क्या नाम, यजुर्वेद को लिया पहले, और वहां दूसरे नंबर पर सामवेद को लिया, तीसरे नंबर पर यजुर्वेद को यहां पर ले ले। तो कहा यजुर्वेद अंतरिक्ष लोक यजुर्वेद, और फिर संकेत किया है देवता क्या है? तो कहने लगे रुद्र, एक रुद्र ग्रहण किया, एकादश रुद्र जो बोलते हो उसमें एक रुद्र को ग्रहण किया रुद्र, और द्वादश आदित्य हो, जो बारह आदित्य ग्रहण किए गए, कहा वो इसके देव है, किसके? अंतरिक्ष के। अंतरिक्ष जो लोक है उकार मात्रा का, उसके जो है ये क्रम से इस क्रम से देव बतला दिए एक रुद्र और द्वादश आदित्य, ये संकेत करते हुए फिर संकेत किया कि भाई यजुर्वेद और जो अंतरिक्ष लोक, यजुर्वेद हो गया अंतरिक्ष लोक हो गया, और देव जो है वो क्या हो गए? तो मैंने एक रुद्र और द्वादश आदित्य, और फिर अग्नि क्या है? तो कहने लगे दक्षिणाग्नि, उसकी अग्नि क्या है? दक्षिणाग्नि जिसे बोलते हो, कहा वो दक्षिणा इसकी दक्षिणाग्नि है, और कहने लगे उसके बाद संकेत किया कि भाई इसका छंद क्या है? तो जगती छंद हो, इस प्रकार से वहां पर ये बतलाया। अब ये सब बतलाने के बाद अब देख लो इसको ओम को मापने की प्रक्रिया, माने उस आकार मात्रा में ही पृथ्वी लोक है, और जो पृथ्वी लोक के देव बतला दिए वो ऋग्वेद है और अग्नि, ये सब बतला दिए ये इतने, और फिर अंतरिक्ष में होने वाले वो कहने लगे उकार मात्रा के अंतर्गत बतला दिए। फिर आई मकार मात्रा, मकार मात्रा के अंतर्गत संकेत किया देवलोक, स्वर्ग आदि लोग जो कल्पना करते हो वो क्या है? कहा मकार मात्रा देवलोक श्याम वेद, और देव आ गए तो देव कौन? तब कहने लगे है कौन है देव? तब कहने लगे विष्णु, और शेष कितने बचे थे? दस, एकादश रुद्र में एक ही को तो लिया था, दस रुद्र और विष्णु ये जो है वो क्या है? कहा उसके देव हैं आहवनी अग्नि, ठीक ना, और गायत्री छंद हो, ये संकेत कर दिया गायत्री उसका छंद है। इस प्रकार से बतला करें, अब बतलाओ ये तीन ही लोगों की तो हम कल्पना करते हैं है? स्वर्ग आदि विशेष की इच्छा करते, ये तीनों कहां आ गए? इस ओम के अकार उकार मकार मात्रा के अंतर्गत हो, ये संकेत कर दिया। अब कहने लगे चौथा पाद चौथी मात्रा और बतलाई थी, तो वहां संकेत किया फिर अथर्व सिखो, तब इसकी बतलाई यहां मह नाम की वो मात्रा बतलाई चौथी, वहां पर संकेत किया कि यावसाने अर्ध चतुर्थ मात्रा, चौथी मात्रा कौन है? अकार उकार मकार यहां तो समझ में आ गया, लेकिन इसकी चौथी मात्रा कौन है? तो क्या कहा? यावसाने अर्ध चतुर्थ मात्रा, जब आपने ओम का उच्चारण किया सामान्य रूप से, तो ओम का उच्चारण बॉडी की सामर्थ्य कितनी है, एक काल विशेष तक ही, प्राणों की गति तक ही है उसका घोष कर सकेगी, उसका उच्चारण कर सकेगी। और जैसे ही प्राण जो है उच्चारण करते हुए निमित्त होते हैं, वैसे जो है क्या है उसका उच्चारण भी लय भाव को प्राप्त होने लगे। अब उस लय काल में या अवसाने उस लय काल में ही अर्ध चतुर्थ मात्रा एक कल्पना कर, उस लय भाव में ही बतलाया कि लय भाव में क्या है, जो अर्ध चतुर्थ मात्रा है वही चौथी मात्रा है। तो अब लय भाव क्या होगा, जो हमारे उच्चारण का लय होता है तो उच्चरित होना जो है वो कहां होता, आकाश में होता। उच्चार जो हम करते हैं शब्द कहां रहता है, शब्द गुण कमाकाशम, शब्द जो है वहां बगैर आकाश के शब्द का प्रस्फुटन ही होता नहीं, आकाश उसके लिए जरूर चाहिए, इसलिए आकाश ही शब्द का आश्रय है। तो अब जो उच्चारण हम करते हैं और उच्चारण जब लय भाव को प्राप्त होता है तो लय भाव कहां प्राप्त होगा, तो वहां कोई आकार नहीं कोई प्रकार नहीं है, वहां शून्यता, वो शून्य में ही तो लय होगा, आकाश में ही तो लय होगा। तो कहने लगे वह जो लय भाव जहां पर कोई आकार प्रकार कुछ भी नहीं, जिसमें लयपना हो जाता, तो वो जो है कहने लगे वही है चतुर्थ मात्रा। अब कहने लगे चतुर्थ मात्रा तो इसका लोक भी बताओ, इसके देव भी बताओ, इसकी अग्नि क्या है, ये सब। तब कहने लगे इस चतुर्थ मात्रा का वेद क्या है, तो कह दिया अथर्ववेद, अथर्व इसका वेद है, अथर्ववेद हो, और देव क्या है, एको शिव, शिव ही उसका वेद का लोक क्या है, तो संकेत कर दिया सोमलोक। अब सोमलोक क्या है, सोमलोक तो कहीं लोकों में सुनाई आता नहीं, तो लेकिन वहां पर श्रुति कहती सोमलोक, तो सोमलोक का मतलब है, हैं? आप श्रुति में बोलते हो उमा सैतम इति सोम, जो उमा के सहित, उमा क्या है, अजानादि शक्ति अविनाशिन सदा संवर धंग निवासिन, या प्रकृतिम तू मायाम विद्धि मायनम तू महेश्वरम, प्रकृति का नाम ही क्या है, माया, और वही क्या माया वाला है जो, वो कौन है, काबू महेश्वर। तो जो शिव कैसा है, तो वही जब प्रकृति से युक्त होता है, तो प्रकृति युक्त परमात्मा का नाम ही है सोम लोक। वैसे चंद्रमा आदि को भी सोम शब्द कहते, लेकिन वो गृहीतमान है, तो ऐसा जो है सोमलोक, और देव जो है कौन, एक, एको देवा शिव, एक देव, अथर्ववेद। अग्नि क्या है, तब वहां संकेत किया संवर्तको अग्नि, वहां अग्नि क्या बतलाई, अथर्व से को अपने के अंतर्गत ये वर्णन आया, मैंने संवर्तक अग्नि, संवर्तक अग्नि का मतलब ही होता है सबका जो संवरण अपने में कर ले उसी का नाम है संवर्तक अग्नि। सम्यक्त्वेन विरोधी इति संवर्त, और उसी को संवर्तक ऐसा बोल देते, तो सबका जो अपने में संवरण करने वाली, जहां पर फिर कोई अग्नि बस्ती शेष नहीं, सारी अग्नियां जिसमें समाहित हो जाती हैं उसका नाम है संवर्तक अग्नि, ये उसकी अग्नि। और छंद बतलाओ, वही छंद क्या है, तो कहने लगे एक राड छंद, ये एक अक्षर का जो ये विराट छंद है, सामान्य छंद नहीं बदला है, ये क्या है, ये विराट छंद, ये संकेत किया। इस प्रकार से उसको बतलाते हुए वहां संकेत किया, तो क्या हुआ मतलब, तब कहा ओम इतिदम सर्वम, ओम इतिदम ब्रह्म इत्यादि करके, ओम इत्येकाक्षरम्, तब उससे भिन्न कुछ बचा, सारा का सारा उस अकार और ओकार मुकार है और चतुर्थ मात्रा की जो कल्पना उसके अंतर्गत आए, इससे भिन्न कौन सी चीज बची, खोजने जाओ तो कुछ नहीं बचा। इसलिए कहा कि ये ब्रह्म का अत्यंत समीपी है और ब्रह्म का कोश है और जो है वो ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, ठीक है। तो ब्रह्म को समझाने के लिए किसी प्रतीक की आवश्यकता पड़ती तो प्रतीक ओम शब्द करके, ओम अच्छा करके उसको चुना गया, लेकिन जो है वो ब्रह्म रूप ही है, तो ब्रह्म की सारी सत्ता सिद्ध करने, ऐसे उसको जब जान लोगे फिर उपासना करनी है, इसलिए यहां संकेत किया। तो भू भुव सुव रीति वा एतास तिस्री व्याहृतयः, ये तीन व्याहृतियां, फिर आगे संकेत तासाम ह इस्मै ताम चतुर्थी महाचमस्य प्रवेदयते का, तीन व्याहृतियां ये, और तीन व्याहृतियों का मतलब ये भी समझाएंगे। अब जो कहने के चौथी मात्रा, तो चौथी यहां भी बतला रहे तासाम, उन तीनों मात्राओं में है, क्या है ऊ ह इष्म, तीनों ये निपात जाकर की रीत से। अब जो निपात जो हैं वो क्या संकेत करते हैं, तो जैसे बोलते हो तो यहां कहा ऊ ह इष्म और ह शब्द का प्रयोग यहां भी आ जाता है तो वो भी एक निश्चयात्मक स्थिति को बतला देता है और एक घटना को बतला देता है। जैसे आप बोलते हो इतिहास, क्या बोलते हो इतिहास, तो इति शब्द को तोड़ दो विच्छेद कर दो, इति धन ह धन आस, तो क्या हुआ इति माने ऐसा, ह ये पूर्व का परामर्शक है, आस माने भूतकालिक क्रिया है था, है ऐसा पूर्व में था, अर्थात पूर्व घटित घटनाओं का जो उल्लेख है उसी का नाम क्या है इतिहास, है ना। ऐसे ही यहां संकेत करते हैं, ये क्यों कहा इसलिए कि ऊ ह इस्मैताम एताम, है ना, ये एताम तासाम चतुर्थी, ये जो तीन मात्राएं हैं इन तीन मात्राओं में जो चौथी मात्रा है उस चौथी मात्रा महाचमसस्य प्रवेदयेत, मने उसको महाचमस ऋषि के पुत्र महाचमस ने क्या है, तो यहां पर कह दिया कि मने देखा था, इसलिए उतारी दिया, मने उन्होंने उसका साक्षात्कार किया, देखा था मने वो थी तो पहले से, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन उस मात्रा का उन्होंने साक्षात्कार किया था, उस मात्रा को उन्होंने देखा था। समय ज्यादा हो गया, ओ